श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उपसंहार के क्रम में हम लोग चल रहे हैं। वाल्मीकि रामायण का तो उपसंहार होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान की लीलाओं का उपसंहार नहीं होता तो उनकी कथाओं का उपसंहार क्यों हो, समापन क्यों हो। परंतु जिस बाह्य दृष्टि से हम लोग आयोजन करते हैं उसमें तो भगवान की लीला के समान परिवर्तन होता ही रहता है। उस क्रम में बड़े भाग्यशाली हैं, बड़ी भगवान की उन जीवों पर, अपने लोगों पर कृपा है कि ऐसे कलयुग के अंदर जहां लोग राम को मानने को तैयार नहीं, वहां हम लोग राम जी की कथा आस्था के साथ सुनते हैं। भगवान की लीला में आस्था की और प्रेम की, दो की बड़ी जरूरत है। भगवान की कथा सुने और सुनते सुनते ये ध्यान में आ जाए कि ऐसा होता थोड़ा ही है, जैसे कुंभकर्ण ने हाथ का झटका लगाया तो 6,700 बानर गिर जाते थे, तो ऐसा इतने झटका लगाने से थोड़ा ही होता है, ये अनास्था है। यदि ऐसा नहीं होता तो वाल्मीकि जी महाराज क्यों लिखते? वाल्मीकि जी महाराज ने लिखा है और भगवान के लिए जो चीज हम लोग हमारे दिमाग से सोचते हैं उसमें समा जाए तो फिर भगवान की लीला क्या हुई? जो राक्षस इतने ताकत वाले हैं उनको भगवान ने मारा तो भगवान अनंत शक्ति संपन्न है, ये बात सिद्ध होती है। हम लोग अपने अनुसार भगवान को देखना चालू करते हैं, जो काम हम नहीं कर सकते वो भगवान के द्वारा कैसे संभव है, वहां आस्था नहीं होती। परंतु भगवान के द्वारा सब कुछ संभव है। देखो एक दिन में लाखों प्राणी मरते हैं, लाखों मनुष्यों के अलावा भी लाखों प्राणी प्रतिदिन मरते हैं और लाखों प्राणी प्रतिदिन जन्म लेते हैं। इसमें शक्ति किसकी काम आ रही? भगवान की आ रही। वे भगवान यदि अपने लीलाओं से, अपने बाणों से, अपने पराक्रम से बड़े बड़े राक्षसों का संहार न करें तो फिर भगवान की शरण में कौन जाएगा? भगवान की लीलाएं क्यों कही जाती हैं कि हम लोगों ने संसार को बड़ा महत्व दिया है? उस महत्ता को हृदय से निकालने के लिए सत्पुरुषों ने भगवान की कथा लिखी ताकि संसार की महत्ता की जगह भगवान की महत्ता हमारे हृदय में उतर आए। ओहो, ऐसे कुंभकर्ण को मारा, ऐसे रावण को मारा, ऐसे मेघनाथ को मारा, तो माने जब तक मेघनाथ बलवान नहीं होगा, रावण बहुत बड़ा बलवान नहीं होगा, कुंभकर्ण बहुत बड़ा बलवान नहीं होगा, तब तक भगवान की आवश्यकता ही क्या होगी? जब इन्होंने संपूर्ण त्रिलोकी में अपना आधिपत्य जमा लिया तब भगवान की आवश्यकता हुई, भगवान से प्रार्थना की गई, भगवान ने अवतार लिया और अवतार लेकर के भगवान ने इनका संहार किया। तो भगवान का काम रावणादि का संहार हो ये अभीष्ट नहीं है। भगवान को तो ये अभीष्ट है कि मेरी जिस समय लीला हुई थी इस लीला को लोग सदा सदा के लिए गाते रहे, सदा सदा उन लीलाओं में मस्त रहे, ताकि संसार की आफत से तो दूर हटे और मेरी लीलाओं में प्रवेश करके दिव्य आनंद को प्राप्त करें। इसलिए कभी कभी यहाँ वाल्मीकि रामायण में कई प्रसंगों में बहुत विस्तार होने से और मन में श्रद्धा की कमी होने से अरुचि सी होती है, थोड़ी आलस्य की बात भी आती है। मन में इतनी श्रद्धा नहीं, मन में इतना भाव नहीं, इस कारण से ही होता है। परंतु जितने विस्तार से वाल्मीकि रामायण में ये बातें बताई हैं, ऐसा बताया जा रहा है जैसे मानो वो उनके सामने युद्ध हो रहा है और ये लिख रहे हैं। और असल में बात भी ऐसी है, जो भगवान की लीलाओं का ध्यान करते हैं या भगवान की लीलाओं को लिखते हैं, उनके सामने भगवान की लीलाएं ऐसी होती रहती हैं। वे लीलाएं भगवान की उनके सामने होती हैं, तभी उनके लीला में कहीं पर भी किंचित मात्र भी त्रुटि नहीं आती। उसमें ये बात नहीं आती कि भाई ये लीला ऐसे कैसे लिख दी, ये ऐसे कैसे हुआ, एकदम साफ यथार्थ उनके सामने आता है। जिस प्रकार से भाई गोस्वामी जी महाराज के राजापुर से भगवान निकले, तो गोस्वामी जी महाराज ने देखा कि मैं होता तो कितना अच्छा होता, तो भगवान ने उसी समय उनको दर्शन दे दिए। और तेई अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा, ये सब उस समय आकर के हनुमान जी ने चौपाई लिख दी, क्योंकि वो लीला के साक्षात कर्मकार में डूब जाते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज ने अपने को भी शामिल किया। इसी प्रकार से वाल्मीकि जी महाराज तो इस लीला में अपने आप को इतना शामिल किए हैं कि जैसे मानो प्रत्यक्ष युद्ध देख देख के लिख रहे हों। अब यहाँ तक बता रहे हैं कि उस शस्त्र की धार इतनी तीखी थी और उस शस्त्र से उनके ऊपर प्रहार किया तो उसके ऊपर ऐसे वो चिन्ह लगा। तो ये बात भाई बिना साक्षात्कार किए नहीं हो सकता। इसलिए अपने को जब भगवान की लीला सुनने को मिलती है, लीला का साक्षात्कार हो रहा है, ये आयोजन होते हैं कथा के आयोजन, ये सामान्य नहीं है। कोई भी चतुर्मास का समय निकालने के लिए करते हो, समय निकालने के लिए नहीं होता, ये कथा के माध्यम से भगवान का साक्षात्कार होता है। तो आइए आप हम सभी अब अपने मन से पहले भगवान के पास अयोध्या में पहुंचते हैं, जहां वे लव और कुश से अपनी पावन कथाओं को सुन रहे हैं, और फिर इस लीला के और अंदर में प्रवेश करने के लिए लंका में चलते हैं। कल कई राक्षसों के मरने पर अंतिम राक्षस अतिकाय मरा था कल के युद्ध में। इस अतिकाय को लक्ष्मण जी ने मारा था। यह अतिकाय रावण का बेटा था, कितना बलवान था और कितनी मुश्किल से मरा, ये कल आपने सुन लिया था। बानर लोग सब लक्ष्मण जी को घेरे हुए हैं, राम जी के साथ लक्ष्मण जी हैं, और बानर लोग बड़े हर्ष के साथ में विजयोल्लास मना रहे हैं, विजय का उत्सव मना रहे हैं। इधर भाई अतिकाय के मरने की बात रावण को सुनाई तो रावण उस समय जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके और कहने लगा, बड़ा उसको उद्वेग आया। उस उद्वेग में चिल्लाते चिल्लाते बोला, धूम्राक्ष मर गया, मेरा अकंपन मर गया, सेनापति प्रहस्त मारा गया, कुंभकर्ण मारा गया, कितने कितने युद्ध के आकांक्षी और युद्ध के अंदर विजय रखने वाले मेरे रत्न थे वो समाप्त तो हो गए। विशालकाय शरीर, विशालकाय राक्षस, शस्त्र अस्त्र में बड़े विशारद, ये सब के सब सूरवीर महात्मा मारे गए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मेघनाद के द्वारा सर्पास्त्र में बंधे हुए ये राम और लक्ष्मण किस प्रकार से सुरक्षित हो गए। नागपाश के द्वारा तो देवता भी बन जाने के बाद खुलते नहीं थे। गंधर्व और यक्ष पन्नक ये भी नागपाश से मोहित हो जाते थे, परंतु राम और लक्ष्मण तो मूर्छित होने के बाद वापस कैसे मुक्त हो गए कुछ पता नहीं चला। मेरे यहां से जो जो सूरवीर निकले उनमें से वापस एक भी नहीं आया। बांदरों में जो प्रधान प्रधान बांदर है उनमें से किसी एक की भी मैंने मृत्यु नहीं सुनी। युद्ध के अंदर राम और लक्ष्मण की मृत्यु को सुनाने वाला कोई जन्मा नहीं, क्या बात है। और तो और विभीषण को भी कोई नहीं मारता है, सुग्रीव को भी किसी ने नहीं मारा। नाशयेत सबलम वीरम, इस सुग्रीव को तो कम से कम मार देते, नहीं तो विभीषण को तो मार ही देना चाहिए था। राम बड़ा बलवान है, उसका अस्त्र भी बड़ा बलवान है। अरे राम ने भी मुझे पराजित करके उस दिन लज्जित करके मुझे युद्ध भूमि से निकाल दिया था। हे राक्षसों, कभी कभी तो मेरे मन में ये भय होता है कि ये राम राम ये नारायण तो नहीं है, ये नारायण ही राम के रूप में हमारे सामने नहीं आ गया है। मैं अपने लंका की चारों तरफ की रक्षा देवताओं के कारण नहीं करता हूं, असुरों के कारण से नहीं करता हूं, गंधर्व यक्ष पिशाचों के कारण से लंका की रक्षा नहीं करता था। मैं मेरी लंका की रक्षा एक नारायण से करता था कि नारायण न आ जाए। नारायण के कारण से रात दिन में जगता रहता था। नारायण के द्वारा मेरी लंका कभी भी ध्वस्त हो सकती है ऐसा मेरे मन में भ्रम था। वो भ्रम मेरा आज दूर हो रहा है। जरूर ये नारायण ही राम के रूप में आया है। मैं अपने लंका के दरवाजों को बंद करके रहता था। राक्षसों, मेरे जीवन में मुझे किसी से भी भय नहीं रहा, एक नारायण से भय रहा है, क्योंकि नारायण से मेरा आज तक कभी प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ है, पर जिनसे युद्ध करता हूं उनके अंदर नारायण की दी हुई शक्ति तो है। मेरे राक्षसों ने बिना किसी प्रमाद के युद्ध किया है और मैं भी लंका की बड़ी रक्षा करता हूं। अशोक वाटिका में कौन कौन आता है तुम लोग सावधान रहना, जो भी कोई लंका में प्रवेश करे तुम सावधान रहना, कौन लंका से किस समय कौन बांदर कहां बैठा है, क्या करता है, कैसे किन से बात करता है, ये सब तुम ध्यान रखना। यत्र यत्र भवेत गुलमस तत्र तत्र पुनः पुनः, जहां जहां राक्षसों का समुदाय इकट्ठा हो, छावनी हो, वहां पर तुम विशेषता से ध्यान रखना। अपने अपने सैनिकों के साथ तुम संगठित होकर अपनी जगह रहना। और द्रष्टव्यं च पदं तेषां, अब उन बांदरों का तुम सदा ही ध्यान रखते रहना। इन बांदरों का कुछ पता नहीं है, प्रातःकाल आ जाए, दोपहर में आ जाए, संध्या में आ जाए, रात्रि में आ जाए, अर्धरात्रि में आ जाए, इसलिए इन बंदरों का कोई पता नहीं है। आप लोग सावधान रहना। दिशताम बलम उद्युक्ताम आपतत किम स्थितम तथा। देखो ये शत्रु लोगों का इस समय में बल बहुत बढ़ गया है, इस कारण से कब किस समय कुछ भी कर दे पता नहीं है। आप लोग सावधान रहना। राक्षसों ने कहा, महाराज जो मर जाते हैं वो अपनी आयु से मरते हैं, कोई राम के पराक्रम से नहीं मरते, वे बांदरों के पराक्रम से नहीं मरते। पराक्रम से यदि कोई मारे तो हमको मारो, हम खड़े हैं, लेकिन जब मरने ही वाला होता है उसको कोई मारता है तो उसमें मारने वाले का कोई उसमें बल नहीं होता, यह तो उसकी स्वाभाविक मौत होती है। राक्षसों ने इस प्रकार की बात कही और रावण ने सबको अपनी तरफ से आदेश दिया और मन में बड़ा क्रोध आ रहा था रावण के, अतिकाय बेटा मर गया। इस बात से उसके हृदय में बड़ी जलन थी, छाती जल रही थी। वो अपने महल में गया, महल में जाकर बैठ गया। बैठ करके अब किस पर क्रोध करे, क्या करे। जिस पर क्रोध आ रहा है वो तो सामने नहीं है, और जो सामने है उनसे स्नेह है, उन पर क्रोध है नहीं। उस समय क्रोध उसका अंदर ही अंदर यूं धीरे 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 ज्वलन होता है। माने जैसे कोई लकड़ी है और वो दबी हुई है, अंदर आग लगती रहती है उसमें। ऊपर से तो वो दबी हुई है, अंदर वो सिलकती रहती है। ऐसे संदीपित क्रोध कोपवन्नी, उसके अंदर क्रोधाग्नि ज्वलित हो रही है लेकिन वो थोड़ी दबी दबी सी है। वह अपने पुत्र के विषय में सोचने लग गया। बार बार वो बोलता है, मेरा देवान तक मर गया, नरान तक मर गया, तृष्णा मर गया, अतिकाय मर गया, जिनके पीछे मैं बहुत बड़ा शक्ति वाला था। राजा लोग मेरे से डरते थे, देवता लोग मेरे से डरते थे, मेरे लिए बड़े घाटे की बात हो गई। मेरे भाई मर गए, मेरा बेटा मर गया, क्या करूं। रावण इस प्रकार से वहां तड़पता तड़पता विचार करता है। इतने में ही रावण का पुत्र अतिरथी मेघनाद, इंद्रजीत, इंद्रजीत कहो चाहे मेघनाद कहो, दोनों एक एक ही का ही नाम है। तो वो इंद्रजीत यानी मेघनाद पिताजी के पास आया, पिताजी को प्रणाम करते हुए कहा कि पिताजी आप शोक क्यों करते हैं, आपके सामने आपका बेटा सब बानरों को मारने की शक्ति रखने वाला जब तक जीवित है, आप क्यों इस प्रकार से विलाप करते हो। पिताजी प्राणियों का संयोग तो इस संसार में होता रहता है और वियोग होता रहता है। हम लोगों ने कहीं युद्ध में भूल की है क्या, हमारे कोई ऐसा योद्धा नहीं जिसने भूल की हो, कोई भूल करने वाला नहीं। मरना और जीना हमारे हाथ की बात नहीं, लेकिन कोई योद्धा लंका को धोखा दे करके और नहीं मरा है, लंका के लिए वो अपना शीश कटाया, इसके एक शोक करने की बात नहीं। मैं जीवित हूं, मोह मत कीजिए महाराज, मैं जब इंद्र के बाणों से नहीं मरा हूं और आपके सामने मालूम है कि इंद्र को मैंने कैद का कैद खाने में डाल दिया था, क्या एक राम और लक्ष्मण के लिए आप इतनी चिंता करते हो। मैं जाऊंगा राम के साथ, लक्ष्मण के साथ, यदि वो भूमि में गए हो, पाताल में गए हो, तो भी मेरा बाण राम और लक्ष्मण के कलेजे में जाकर लग जाएगा। हे पिताजी, मेरे बाणों का प्रभाव आपको मालूम है, फिर मेरे भरोसे आप प्रसन्न क्यों नहीं होते। आप प्रसन्नता से मुझे हृदय से लगाकर विदा कीजिए, मैं आपके सामने शपथ पूर्वक कहता हूं कि आज मैं अपने बाणों के द्वारा राम और लक्ष्मण को मार दूंगा। मेरे पास पौरुष भी है और मेरा भाग्य भी है, मैं केवल भाग्य के अधीन नहीं रहता हूं, पौरुष दिखाता हूं, केवल पौरुष के भरोसे भी नहीं रहता हूं, भाग्य को भी मानता हूं। न तो मैं केवल भाग्य पर रहने वाला और न केवल अपने पुरुषार्थ पर रहने वाला, मैं दोनों पर रहने वाला हूं। आज देखना, आज इंद्र है, यम है, वरुण है, रुद्र है, साध्य है, अग्नि है, चंद्र है, सूर्य है, ये सब मेरा पराक्रम आकाश में छिपे छिपे देखेंगे, और वे जब वापस अपने स्थान पर लौटेंगे तो उनका सिर नीचा हुआ मिलेगा, क्योंकि हमारी विजय देख नहीं सकते देवता लोग। आज के बाद देवता लोग मेरे युद्ध के पराक्रम को देखने के बाद आपकी लंका की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देखेगा। इस प्रकार से बार बार मेघनाद आत्म प्रशंसा करने लगा। महाराज रावण के हृदय में उत्साह जगाने लगा, और उस समय में एक बहुत अच्छा घोड़ा रथ में जोता हुआ, उस रथ में जाकर के वो बैठ गया और युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। जब वो युद्ध भूमि में जा रहा है तो उसके साथ में सैनिक लोगों की बड़ी सेना है। कोई हाथी पर बैठे हैं, कोई घोड़ों पर बैठे हैं, कोई देखो ध्यान से सुनना हो, कोई व्याघ्र पर बैठे हैं, कोई बिच्छू पर बैठे हैं, कोई बिलाव पर बैठे हैं, कोई ऊंट पर बैठे हैं, कोई गधों पर बैठे हैं, कोई सर्पों पर बैठे हैं, कोई सुअरों पर बैठे हैं, कोई कुत्तों पर बैठे हैं, और कई सिंगों पर बैठे हैं, कई रींछों पर बैठे हैं। ये इनकी सवारियां हैं राक्षसों की। अब लगता है कि बिच्छू पर भी कोई बैठता है क्या, कि भाई ऐसे बिच्छू होंगे वो, बिलाव पर भी कि हाँ बिलाव पर भी, सांप पर भी बैठे, सांप पर भी बैठे। अच्छा कोई कौवे पर बैठा है, कोई हंस पर बैठा है, कोई मोर पर बैठा है। ऐसे ऐसे राक्षस तरह तरह की सवारियों में बैठे बैठे अब मेघनाथ का साथ देने के लिए युद्ध भूमि में जा रहे हैं। किसी के पास फरसा है, किसी के पास तलवार है, किसी के पास गदा है, किसी के पास मुदगर है, किसी के पास और वो बर्छियां हैं, किसी के पास में शतकनियां हैं, गदा के अंदर इतनी इतनी बहुत बड़ी बड़ी लगे रहने वाली लोह की सूलें, किसी के पास परिघ है और किसी के पास लकड़ी है, केवल लकड़ी, किसी के पास मुदगर है। ऐसे ऐसे अपने शस्त्र ले ले करके और भी तरह तरह का शब्द करते हुए बड़े वेग के साथ लंका से प्रस्थान करते हैं। एक बहुत अच्छा सफेद छत्र है, वो मेघनाद के रथ के वहां पर लगाया हुआ है, मानो आकाश में चंद्रमा चमकता हो। दो उसके चमर डुलाने वाले सेवक उसके पास में पीछे खड़े हैं, वे उसका चमर डुलाते हैं। मेघनाथ बोलता है कि हमारी उत्सव की सवारी है कि भाई युद्ध की सवारी है, परंतु भाई रावण का बेटा है ना, इस कारण से उसका राजोचित सम्मान हो रहा है। रावण ने बड़े उत्साह के साथ कहा, पुत्र अब तेरे पर मेरी सारी बाजी लगी हुई है, तुमने आज हमारे आंसू पूछे हैं, तो ये हमारे आंसू तुम सदा के लिए तभी पूछ पाओगे जब तुम राम और लक्ष्मण को यहां पर मार दोगे। इंद्रजीत, आज तुम्हारा उत्साह देख करके मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जाओ मेघनाथ, तुम जरूर आज विजयी होकर के आओगे। राक्षस राज के द्वारा इस प्रकार से उनको आशीर्वाद मिला और इंद्रजीत है वो लंका के दरवाजे से बाहर आया। जब लंका में वो चल रहा था सेना के साथ, तो उस समय लंका ऐसे लग रही थी कि मानो आकाश के अंदर कई तारे चमकते हो, ऐसा लग रहा है। युद्ध भूमि की ओर गया तो भाई वहां जाकर के उसने, युद्ध भूमि में जाते ही उसने एक यज्ञ किया, अपने चारों तरफ सैनिकों को खड़ा कर दिया, आदेश दे दिया, खबरदार कोई बंदर मेरे पास न आ सके, शस्त्र लेकर के तैयार हूं, मैं अभी यहां यज्ञ करता हूं। उस समय उसने यज्ञ किया, स्वयं एक यज्ञ की अग्नि के समान देदीप्यमान था और राक्षस राज ने विधिवत मंत्रों का उच्चारण किया, उच्चारण करके और अरणि मंथन से वहां पर यज्ञ अग्नि पैदा की। अग्नि पैदा करने के बाद वहां जो हवि वगैरह थी वो सब वो साथ में लाया था, वो हवि देकर के अग्नि को और प्रज्वलित किया। माला लाया था, गंध की सामग्री लाया, वो सब लाकर के और वो मंत्र बोलने लगा। उस युद्ध भूमि के अंदर बड़ा विचित्र यज्ञ था, शस्त्राणि सर्पत्राणि। देखो कोई यज्ञ की सामग्री कहीं अच्छी पत्ते वगैरह में रखी जाती है तो पत्ता क्या है, वहां पर उनके ये बाण थे, यही पत्ते के थे, उनके ऊपर बाणों के ऊपर सब सामग्री रख दी और स्वाहा स्वाहा, तो सामग्री रखी हुई उससे वो स्वाहा कर रहा था। और लकड़ियां कहां से लाए, तो बहेड़े के बहेड़िया ही बहेड़े थे, वो ही उसके लकड़ी की सामग्रियां थी। लाल वस्त्र पहन रखा था और उसका सुवा तांबे का नहीं था, वो भी वहां पर लोहे का था। और उसने शस्त्रों के ऊपर ही अपना आसन लगाया, शस्त्र बाण वगैरह लगाया, उसके ऊपर बैठ गया और उस यज्ञ के अंदर उसने एक बकरे को पकड़ा, बकरे को पकड़ करके और फिर वहां पर यज्ञ किया। उस यज्ञ के अंदर अग्नि बहुत ऊंची ऊंची प्रज्वलित होने लगी, उस यज्ञ के लपटों को देखने लगा कि लपटें कैसी जा रही है, सीधी जा रही है, थोड़ी जा रही है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। लपटों को देखते देखते उसका मन उत्साह से भर गया, लपटें एकदम सीधी जा रही है, मेरी विजय निश्चित होगी। सकृदेव समिद्धस्य और विधूमस्य महार्चिषः, धुआं उन अग्नि के अंदर होता ही नहीं था, लंबी लंबी लपटें जा रही है। विजयम यान्य दर्शयन, उसने देखा कि अब इससे तो मेरा निश्चित रूप से विजय होने वाली है। उसने अग्नि की परिक्रमा की और अग्नि की परिक्रमा करने के बाद जब उसने श्रद्धा के साथ अग्नि को प्रसन्न करने वाले मंत्र बोले और नमस्कार किया, साक्षात अग्नि में से अग्नि प्रकट हो गई और वो अग्नि प्रकट होकर के उसको हविष तत् प्रति जगरा, उसने उसको कुछ दिया और उसने उस अग्नि से वो अस्त्र लिया। इस प्रकार से उसने जब जो है अस्त्र ले लिया, तब वह धनु है, धनुष है, रथ है, ये सब ले लिया करके अब जो है अग्नि को जो है वापिस समित करके और वह अंतर्धान शक्ति को प्राप्त कर चुका, युद्ध भूमि में छिप जाए और युद्ध करे। उस समय में उसकी ऐसी शोभा हो रही थी जैसे आकाश के अंदर नक्षत्र ग्रहों के बीच में जैसे चंद्रमा की शोभा होती है, ऐसे भाई मेघनाद की शोभा हो रही थी, क्योंकि उसने अग्नि को प्रज्वलित करके आज बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त कर तेजस्वी हो गया था। वह अंतरित होने की शक्ति प्राप्त करने के पश्चात युद्ध भूमि युद्ध के अंदर खूब बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ा। राक्षसों, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों के साथ में मैं हूँ, मैं बांदरों का नाश करूंगा, आप लोग किसी प्रकार से घबराना नहीं। राक्षसों के मन में बड़ा उत्साह था। राक्षसों ने अपने वो सब बड़े 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 शस्त्र ले लिए और शस्त्र ले लेकर के वे बांदरान जगनु राहवे, बांदरों को मारने के लिए टूट पड़े उन पर। अब जब इस प्रकार से टूट पड़े तो मेघनाद ने भी बड़ा क्रुद्ध होकर के निशाचरों से कहा कि अब बांदरों को देखो और मारो, आप बांदरों को मारने की खुली छूट देता हूं। राक्षस लोग जय जयकार करते हुए गर्जना करते हुए वे बांदरों के ऊपर बाणों की खूब वर्षा करने लगे। बांदरों के ऊपर नाराचों की, गदाओं की, मुसलों की और की सब की वर्षा करने लगे, तो बांदर लोग, बांदरी सेना वहां पर डरने लगे। इधर बांदरों ने भी, इनके पास तो खास करके दो ही हथियार थे, या तो पर्वत शिखर या शिला और या फिर वृक्ष, बंदरों के पास यही शस्त्र थे, या जो राक्षस मर जाते या जिनको मार देते उनके मूसल और गदा लेते थे। देखो इस सेना के अंदर बाण मारते थे केवल राम और लक्ष्मण, बाणों से युद्ध करने वाले थे राम और लक्ष्मण, बाकी सब अपने हाथ में जो शस्त्र आए उससे लड़ाई करने वाले। तो बांदरा पादपा युधा, उनके पास तो केवल वृक्ष ही आयुध थे, उससे खूब आपस की लड़ाई हुई। इंद्रजीत जो है क्रुद्ध हो गया, बांदरों के ऊपर खूब उसने शस्त्र बरसाए, एक एक बाण से उसने 9, 5, 7 ऐसे जितने आए उनका, उन बांदरों का उसने जो है भेदन करना चालू किया। बड़े बड़े शस्त्र लेकर के बाण लेकर के अब बांदरी सेना का संहार करना चालू किया, तो बांदरी सेना बेचारी घबराने लग गई। बांदरा सर पीड़िता पेतु, वो गिरने लग गए और उनका संकल्प था सब टूट गया, मथित संकल्पा। बांदरों ने जो उत्साह देखा, हम ये कर देंगे, लंका को खा जाएंगे, लंका को नष्ट कर देंगे, ये कर देंगे, आज मेघनाद के सामने उनका संकल्प सब खत्म हो गया। और वो मेघनाद उगते हुए सूर्य के समान बड़ा तेजस्वी पीछे पड़ गया, बानरों के पीछे ही पड़ गया। वे बानर बिचारे, किसी की पूंछ कट गई, किसी की पैर कट गई, किसी का छाती में लग गया, किसी की बाण किसी की छाती में लग गया, कोई व्यथित हो रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई खून से लथपथ हो गया। और वे बानर इधर उधर बिचारे दीनहीन हुए वे दौड़ रहे, घबराते हुए दौड़ रहे हैं। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं धन्य इनका जीवन, इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं, रामस्यार्थ है, केवल राम जी के लिए लड़ रहे हैं, राम जी के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं और अपने जीवन की आशा को राम जी के ऊपर न्योछावर कर दिए हैं। इतना होते हुए भी अनिवृत्ता, वो निवृत्त नहीं हुए, लड़े रहे, दम जो है डटे रहे युद्ध के अंदर। अपने हाथ में शिलाओं को ले लिया, पर्वतों को ले लिया, शिखरों को ले लिया और उनके द्वारा उन्होंने रावण की सेना पर और रावण के पुत्र मेघनाद के ऊपर एक साथ वर्षा कर दी। क्या ये मेघनाद है, इतने सारे शिलाखंडों को और वृक्षों को वो बाणों के द्वारा सहज ही काटने लग गया। रावणी समिति जय, समिति बोलते हैं युद्ध को, युद्ध के अंदर उसने विजय प्राप्त।